لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني يشر، اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. چودہ سو اڑتیس ہجری یا 1438 ہجرہ کے ایام عزا کے اس پہلے عشرے میں، اگرچہ کئی اہم مسائل کی جانب آپ کی توجہ کو مبذول کرانا ہے، لیکن دنیا کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آج سے 30 سال پہلے 1985 میں جب پہلی بار ماہ مبارک کے رمضان میں ٹورنٹو میں میں نے 30 مجلسیں پڑھی تھی، شاید مجمع کی اکثریت اس وقت ٹورنٹو میں نہ ہو، اور شاید ہو سکتا ہے کہ پیدا بھی نہ ہوئے ہوں، تو اس وقت ایک خاص موضوع بن گیا تھا کہ کس طرح سے ایک جھوٹا امام تیار کیا جا رہا، اور اس وقت جو دنیا کے حالات ہماری آنکھوں کے سامنے، 2016 31 سال کے بعد یہ ایسا موقع لگ رہا، یہ محسوس ہو رہا کہ کام مکمل ہو گیا اور بہت جلد صاحبان ایمان کی ایک جذباتی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر، اب یہ میں اس لفظ کو آج واضح نہیں کروں گا کہ وہ کیا کمزوری ہے، لیکن ایک جذباتی کمزوری، یہی کمزوری بھی ایمان محبت اہل بیت عقیدت معصومین کی وجہ سے، لیکن اس سے فائدہ اٹھا کر اس مشن کو مکمل کیا جائے گا، اور وہ بات انشاءاللہ آج تو نہیں آنے والی کچھ تقاریر میں آئے گی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا موضوع یہ نہیں، کئی اہم باتیں ہیں جس کی جانب آپ کی توجہ کو مبذول کرانا ہے، لیکن ان کئی باتوں میں سب سے اہم بات یہ بنے گی، اور اس تک جانے کے لیے قرآن کریم کی اس آیت کو جسے میں اکثر تلاوت کیا کرتا ہوں، آج کی پہلی مجلس میں سرنامہ کلام بنایا گیا، یہ آیت سورہ مبارکہ عنکبوت کی پہلی دو آیتیں ہیں، اگر الف لام میم کے بعد کاؤنٹنگ شروع کریں. سورہ عنکبوت قرآن کریم کا وہ سورہ ہے جو ہر سال شب قدر میں مومن کا دل چاہے کہ نہ چاہے اعمال کا حصہ بنا کر ایک طرح سے زبردستی پڑھوایا جاتا. اب میں اگر اس طرف چلا گیا کہ ہر موقع پر جب کوئی سورہ इस्लाम ने रिकमेंड किया है तो उस मौके का उस सूरे से बहुत गहरा ताल्लुक होता। शब कदर का बहुत गहरा ताल्लुक है सूरह अनकबूत से, लेकिन ये बात बिल्कुल ही अलग ट्रैक पे चली जाएगी, तो इसको छोड़िए। अर्ज करने का मकसद यह है कि सूरह हर एक को पढ़ना पड़ता है आमाले शब कदर की वजह से, वरना तो शायद यूं तो सूरह अनकबूत को कोई ना पढ़े उन लोगों के अलावा जो रोजाना थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ के एक कुरान मुकम्मल करते हैं। सूरह रहमान की तिलावत होगी, सूरह यासीन की तिलावत होगी, सूरह मुल्क की तिलावत होगी, सूरह दहर की तिलावत होगी, सूरह अनकबूत। अलबत्ता इस सूरह अनकबूत का शान नुजूल भी बहुत अहम है, और अगर पैगंबर का वो जुमला जहन में रखिएगा जिस पर मैंने कई मरतबा मजलिसें पढ़ी हैं घर की, कि जुमला यह था कि जो इस्लाम का आगाज है वही आखिरी जमाना होगा। जो शुरू इस्लाम में अल्लाह के रसूल को और मुसलमानों को प्रॉब्लम फेस करना पड़े, कहा कि आखिर में घूमकर जमाना वहीं पे पहुंच जाए। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, कुरान की आयत है कि कोई जमाना नया नहीं होता, यही दिन और रात है जिसे हम घुमा घुमा के इंसानों के बीच में लाते हैं। मगर अल्लाह के रसूल की वो हदीस कि कान अल इस्लाम व गरीबन व सयकून व गरीब फतूबा लिल गुरबा, कि जब इस्लाम शुरू में आया तो गरीब था और आखिरी जमाने में यह दोबारा गरीब बन जाएगा, और खुशखबरी हो उन लोगों के लिए कि जो गरीब हैं। अच्छा, ये तो वो हदीस है जिस पर मैं कई बार बात कर चुका हूं, इसलिए इस लफ्ज को भी नहीं समझा रहा कि गरीब से मतलब क्या। सिर्फ जो असल पैगाम है कि जिस तरह इस्लाम शुरू हुआ आखिरी जमाने में भी वही हालत हो जाएगी। सूरह अनकबूत ऐन उस मौके पे नाजिल हुआ जो बिल्कुल इस्लाम का इब्तदाई जमाना, और इतना टॉर्चर इतना टॉर्चर इतना टॉर्चर मुसलमानों पे हो रहा कि उनका सब्र जवाब दे रहा। बाकायदा डेलीगेशन रसूलुल्लाह के पास जाता है रात के अंधेरे में, उस जमाना है कि दिन की रोशनी में कोई मुसलमान भी रसूल से मुलाकात कर नहीं सकता, और जाके शिकायत करते हैं कि या रसूल अल्लाह, दिन दो दिन, हफ्ता दो हफ्ता, महीना दो महीने की बात हो तो अब ये मजालिम बर्दाश्त भी कर लिए जाए, लेकिन इतने साल हो गए और ये खत्म होते नजर नहीं आते और बढ़ते चले जा रहे। अब मैं एक जुमला शुरू में कह चुका हूं कि आखिरी जमाने की भी यही खासियत बताई गई कि कोई एंड तो होना चाहिए ना, हर चीज एक मंजिल पे जाके खत्म हो जाती है। लेकिन शुरू जमाने, ये शुरू इस्लाम की बात अभी कर रहा हूं, या रसूल अल्लाह, आखिर ये मसाइब, आखिर ये मजालिम, आखिर ये टॉर्चर, आखिर ये तशद्दुद, आखिर ये जुल्म कब जाके खत्म होगा? तो पैगंबर इस्लाम जलाल में भी आ गए और फिर सूरह अनकबूत नाजिल हुआ। मैं चूंकि आज मजलिस का जो जहन में एक मैंने ट्रैक बनाया है उससे हटना नहीं चाह रहा, वरना पैगंबर जलाल में आ गए तो क्या कहा पैगंबर ने, वो जुमले भी बहुत अहम है लेकिन आज के लिए नहीं। और सूरह अनकबूत नाजिल हुआ जिसका आगाज ही इस बात से है कि हसब अन्नास अय्युतरकू अय्युलू आमन्ना, कि तुम लोग सूरह हुजरात की आखिरी आयत और सूरह अनकबूत की पहली आयत। सूरह अनकबूत मक्के में आया और बिल्कुल शुरू जमाने में आया, सूरह हुजरात मदीने में आया और बिल्कुल पैगंबर की जिंदगी के आखिरी सालों में आया। मगर आज नहीं, आज सिर्फ ये पहली आया कि तुम लोगों ने ईमान को क्या समझ लिया, इतना मामूली है, इतना सस्ता है, इतना हकीर है, इतना कम कीमत है कि बगैर कोई कुर्बानी दिए हुए तुम ये चाह रहे हो कि तुम्हें ईमान की सारी बरकतें और फायदे मिल जाए। क्या जबान से अपने आप को ये तर्जमा, क्या जबान से अपने आप को मोमिन कह देना काफी? हसेबन नासो अं युतरकू, कि क्या अल्लाह उनको छोड़ देगा सिर्फ इसलिए कि इन्होंने जबान से अपने आप को मोमिन कहा? देखिए, अब खुद ये आयत बता रही कि बात उन लोगों से हो रही जो अपने आप को जबान से मोमिन कह रहे, जो मोमिन कह ही नहीं रहे। उनसे कुरान बात नहीं कर रहा, ये बात उनसे कर रहा है जो अपने आप को मोमिन कह रहे। हर वो आदमी जो अपने आप को मोमिन कहे इस आयत में आ रहा, क्योंकि इस पर भी मैं बहुत गुफ्तगू कर चुका हूं तो तशरीह में नहीं जा रहा, खाली तर्जमा कि क्या क्या गलत गुमान, हसेब हसेबा गलत ख्याल, गलत गुमान या मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है तुम्हारे जहन? सिर्फ अपने आप को मोमिन कहने से छोड़ दिया जाएगा? वह हमला युफ्तनू, और क्या तुम्हारा इम्तिहान या ट्रायल या आजमाइश नहीं होगी? और फिर ये तो कुरान ने पैगाम दे दी, फिर आगे अगली आयत में जो इसी से मिली हुई अल्लाह ने अपना तरीका बताया, वलन तजदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह के तरीके में कभी तब्दीली नहीं आती, वो पहला जमाना हो कि आखिरी जमाना। और वो तरीका क्या बताया? तरीका ये बताया, वलकद फतन्न लजीन मिन कबले, तुमसे पहले भी जिसने अपने आप को मोमिन कहा हमने उसका इम्तिहान जरूर लिया। क्यों लिया इम्तिहान? ताकि ये पता चले अल्लज़ीन सदकू, सच्चा मोमिन कौन है, वला यालमन्नल काज़िबीन, और झूठा मोमिन कौन। तो आप कुरान की इस आयत पहले मरहले पर तो मोमिनों की दो किस्में कर दी, दोनों अपने आप को जबान से मोमिन कह रहे हैं, कहा एक एक सच्चा मोमिन एक झूठा मोमिन, बात भी कॉमन सेंस की। हर वो चीज जो कीमती, हर वो चीज जिसकी कोई वैल्यू, उसका बहरहाल एक झूठा या फेक किस्म का मॉडल या वर्जन भी मार्केट में आएगा। जो बेकार चीज है, बेहकीकत चीज है, उसमें किसी को जरूरत नहीं। अब कराची में या पाकिस्तान में जो चाइना के बने हुए 100-100 रुपए के मोबाइल आते हैं, उसकी नकल कभी नहीं बनाई जाएगी। जो कीमती चीज, तो ईमान की भी कहा कि एक दूसरी किस्म होगी झूठा मोमिन। अब यहां पर कुरान ने फर्क यह बताया कि जो जबान से अपने आप को मोमिन कहे इम्तिहान में, या दे नहीं या नाकाम। आइए अब इस आयत को एक करबला से तो नहीं, लेकिन करबला का बाद का वाकया है, करबला के मैसेज से मिलाते हैं। और ये रिवायत जो अब मैं पढ़ रहा हूं, इसका रावी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि इसके रावी हमारे पांचवें इमाम, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुद पांचवें इमाम इसके रावी बन रहे हैं। फरमाते हैं कि मैं अपने बाबा के पास था। अब ये करबला जब तस्किरा होगा तो करबला का जो पहला वारिस जिसे हम पुरसा देंगे वो हमारा चौथा इमाम, वाकया चौथे इमाम का, और करबला से मुताल्लक है। पांचवें इमाम कहते हैं कि मैं अपने बाबा के पास बैठा था, और ये वो वक्त था कि जब मेरा बाबा अपने चाहने वालों से, अपने शियों से एक आम मुलाकात किया करता है। बाकायदा चौथे इमाम के हालात में तफसील आती है कि अपने दिन को इमाम ने कितने हिस्सों में किस तरह तकसीम किया था, क्योंकि इसी अय्याम अज़ा में, बल्कि इसी माह मुहर्रम में तीसरा अशरा सज्जादिया कहलाता है, उसमें चौथे इमाम के हालात पढ़े जाते हैं। बहुत जल्दी वो शुरू होने वाला है तो मैं तफसील में नहीं जा रहा। एक वक्त चौथे इमाम ने रखा था जिसमें अपने शियों से मुलाकात होगी और हर शिया को आने की इजाजत। आप देखिए ये चौथे इमाम का जमाना, करबला के फौरन बाद का जमाना, तो ज्यादातर उस गैदरिंग में करबला का तस्किरा होता। चुनाचे वो बहुत मशहूर हदीस करबला ही की वजह से आई थी, जब इमाम ने ये फरमाया कि आखिरी जमाने में अपने हाथ में आग लेके खड़ा होना आसान होगा और ईमान बचाना मुश्किल होगा। ये हदीस ऐसे नहीं आई है, इसकी तफसील है कि जब साहिबान ईमान वो बातें कर रहे थे, एक ही जैसी रिवायत है, रिपीट ना होने पाए तो मैं बात को असल जो आज का मौजू है वहां ले जाता हूं, लेकिन बातें ये कि मौला हम करबला में नहीं थे, काश हम करबला में होते। ये लफ्ज काश बहुत कीमती भी है और कभी ये मजाक बन जाता। कीमती इतना है कि कयामत तक जब आप ज़ियारत वारिसा पढ़ेंगे, इख्तिताम होगा या लैतनी कुंतु माकुम, काश आए करबला वालों में आपके साथ होता। और मजाक बन जाता है जब इस किस्म की हदीस आती कि अब चौथे इमाम सारा दिन मातम करके सफ़े अज़ा पे आंसू बहा के एक वक्त अपने शियों से मुलाकात कर रखा, बातें हो रही। और हर मोमिन ये कह रहा है, जितने लोग वहां पे आए थे بڑھ چڑھ، کاش مولا ہم کربلا میں ہوتے تو آپ دیکھتے کہ جس طرح سے ہم اپنی جانیں آپ پہ قربان کرتے ہیں اور آپ کی خاطر اور آپ کے بابا کا دفاع کرتے ہوئے یا ان کے مقصد کو، جو باتیں ہیں سارے کا خلاصہ یہ کہ کاش ہم 10 محرم 61 ہجری کو کربلا میں ہوتے تو یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ہم سے زیارت وارثہ میں کہلوایا جاتا ہے، یہ ایک پیغام ہے. لیکن جب امام نے یہ دیکھا کہ یہ کہنے والے ہیں کون جو مقصد حسین کے لیے ایک ناخون کٹوانے کو تیار نہیں، اور باتیں اتنی بڑی بڑی کہ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے، پوری ایک نسل کربلا کے بعد پیدا ہو کے جوان ہوئی چوتھے امام کے سامنے، 35 سال جو کربلا کے بعد 10 سال بعد بھی پیدا ہوا تو 25 سال کا، تب یہ لوگ یہی افسوس کر رہے ہیں. میرا پانچواں امام کہتا ہے کہ میں نے دیکھا میرے بابا کا سر جھکا، نگاہیں زمین پر ہیں، باتیں سب کی سن رہے ہیں. جب سب اپنی اپنی کہہ کے خاموش ہو گئے تو ایک بار چوتھے امام نے سر اٹھایا. بالکل ایسے ہی ایک واقعہ چھٹے امام کا بھی سنتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ ایک پیغام، لیکن وہی بات کہ ایک ہی پیغام بار بار یاد دلانا پڑتا، ہر نسل کو یاد دلانا پڑتا. یہ چوتھا امام یاد دلا رہا، وہ چھٹے امام نے یاد دلایا، اس کے بعد بھی معصوم ان کے واقعات، لیکن پہلا واقعہ میں چوتھے کا ملا اور چوتھے ہی کا ملنا چاہیے کیونکہ کربلا کے حوالے سے بات. چوتھے امام پانچواں کہتا ہے کہ میرے بابا نے سر اٹھایا اور ابھی ابھی کنیز نے وہ جو تندور روشن کیا تھا اس کی جانب میرے بابا نے اشارہ کیا، کہا جاؤ اور جا کر ایک ایک کوئلہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کے آ جاؤ. پانچویں امام کہتے ہیں کہ میرے بابا کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا کہ میں تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور آگے بڑھنا چاہوں. یہ وہی منظر ہے جو آپ نے سیرت رسول میں بار بار دیکھا کہ جہاں پیغمبر امتحان یا آزمائش کی کوئی بات کہی، ابھی جملہ پورا نہیں ہوا اور میرا مولا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گئے. چاہے وہ دعوت ذیلشیرہ ہو اور چاہے وہ خندق کے میدان میں عمر ابن عبدود کے تانے کا جواب ہو، ہر جگہ اور رسول بٹھا دیتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ یہ بات تم سے نہیں ہو رہی، لیکن وہ سلسلہ خالی مولا کے حوالے سے نہیں، ہر امام معصوم کے یہاں یہی تسلسل ملے. چوتھے امام امام وقت ہے، پانچویں امام ظاہری اعتبار سے ابھی امام نہیں ہے، وہی اسٹیٹس ہے جو علی کا رسول کے پاس ہے، چنانچہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور تیزی سے جانا چاہتے ہیں. ہاتھ پکڑ کے روک لیا باپ نے اور کہا انک منی وانا منک، بیٹا میں تجھ سے نہیں کہہ رہا ہوں، تو تو میں ہوں اور میں تو تو، انک منی تو مجھ سے ہے، وانا منک اور میں تجھ سے ہوں. یہ بات تو ہے ان عام صاحبان ایمان کی، عام شیعوں کی. اب پانچواں امام کہتا ہے جب میرے بابا نے روک لیا، اللہ کے رسول نے علی کو بٹھا دیا تھا نا دعوت ذیلشیرہ، تین بار انتظار کیا، اللہ کے رسول نے بٹھا دیا تھا نا میدان خندق میں عمر ابن عبدود کے تانوں پہ تانے سننے کے باوجود چوتھے نے پانچویں کو بٹھا دی. ذرا سا ایک گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا ادھر آ جائیے تاکہ اب جو لوگ آ رہے ہیں ان کو زحمت نہ ہو اور میرا تسلسل اپنی جگہ سے نہ کٹے، ادھر کافی جگہ ہے، کافی جگہ ہے، کافی جگہ ہے، آگے نہیں آئیے آپ تھک جائیں گے، لیکن ادھر بہت جگہ ہے. پانچویں فرماتے ہیں کہ جب بابا نے مجھے بٹھا لیا تب مجھے یہ یقین کامل تھا. اب یہ ایک انداز ہے بیان کرنا، ورنہ پانچواں امام بھی ان لوگوں کو اسی طرح سے جانتا ہے جیسے چوتھا جانتا، تاکہ مجھے یقین تھا کہ سارا مجمع دوڑ کے گیا ہوگا اور تندور کے بعد جگہ نہیں ہوگی. چھٹے امام کے واقعے میں صرف ایک آدمی سے کہا گیا، یہاں پورے مجمع سے کہا گیا، لیکن یہ دیکھ کے میں حیران ہو گیا. یہ پانچواں امام، ये देख के मैं हैरान हो गया कि वही सारे लोग जो अभी बढ़ बढ़ के बातें कर रहे थे, सब अपनी जगह बैठे हैं और सबके सर झुके हुए। इमाम मासूम ने फरमाया, दावे करना बहुत आसान है लेकिन इम्तिहान के वक्त, वही तकरीबन उससे मिलता जुलता जुमला भी मैं दोहराता हूं, इम्तिहान के वक्त बहुत कम लोगों के कदम अपनी जगह जमे रहते। अच्छा यहां पे एक बात मैं कह दूं, क्या आप कहेंगे कि कैसे अजीब मोमिन थे? अरे आज इमाम नबी कहे तो इमाम के नाम पे हम अपने हाथ पे आग उठाने को तैयार, इमाम के हाथ नाम पे आग पे चलने को तैयार, वो कैसे लोग थे? आपसे आग की बात नहीं कही जाएगी। जब इम्तिहान दिया जाता है ना तो हर आदमी से उसके एतबार से इम्तिहान लिया जाता। ये नहीं है कि जो जैद से इम्तिहान लिया गया वही इम्तिहान बकर से लिया जाएगा। छोटी सी बात, बात बहुत फैल रही है, छोटी सी बात, पैसे वाला, अब उसका इम्तिहान ये नहीं है कि अपने पैसे में से राय खुदा में कुछ खर्च करो, बस पैसे वाले से मतलब बहुत पैसे वाला, जिसके पास इतनी दौलत तो खुद मुझसे एक साहब ने कहा कि इतने पैसे हैं कि मेरी समझ में नहीं आता इसका करूं क्या। हमने कहा मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं वो तो खैर, बाद लोगों की इतनी आमदनी, अब आप जिस दुनिया में बैठे हैं, अभी भी एक नई लिस्ट आई है कि इस वक्त सबसे ज्यादा किसके पास दौलत है और उसके बाद किसके पास इतने पैसे, उनसे ये कहा जाए 10 गरीबों को खाना खिला दो या 50 गरीबों को खाना खिला दो, ये तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं। उनसे ये नहीं कहा जाएगा, उनसे कहा जाएगा फुला गलती की है तो 60 रोजे रखो। पैसे देना उनके लिए मसाला नहीं है, जिस्मानी तकलीफ बर्दाश्त करना। और एक गरीब आदमी जिसके घर में हमेशा फाके रहते, सारा साल उसका ऐसा गुजरता, उससे ये कहा जाए कि 60 रोजे रखो तो कहे 60 क्या, मैं तो 360 रोजे रखता हूं। लेकिन उससे ये कहा जाए कि 10 डॉलर खर्च करो तो उसका सारा बजट आउट हो जाएगा। तो इम्तिहान का जब वक्त होता, कफारे नहीं इम्तिहान, तो हर आदमी के एतबार से इम्तिहान लिया जाता। अब बास का इम्तिहान ये नहीं है कि 30,000 के लश्कर यजीद को कत्ल करके आ जाओ, वह अब्बास के लिए बच्चों का खेल। अब बास का इम्तिहान ये कि तुम्हारे सामने कासिम के बदन के टुकड़े हों और तुम अपनी तलवार पे हाथ मत रखना, अकबर के कलेजे में बर्छी लगे और तुम्हें सब्र से काम लेना, यह अब्बास का इम्तिहान। वो इम्तिहान नहीं है कि जाओ ये लश्कर यजीद 30,000 का है, बस जरा इनको थोड़ा सा पीछे हटा दो, सबका खात्मा करना भी कोई बात नहीं, लेकिन इम्तिहान इसे नहीं कहते। तलवार चलाने वाले का इम्तिहान है तलवार न चलाओ, और तलवार न चलाने वाले का इम्तिहान है कि मैदान में जाओ। अब ये बात अभी तफसील से आएगी, क्योंकि आजकल हमारे यहां बहुत सारी जज्बाती बातें होने लगी। तो पैसे वाले का इम्तिहान, उसको जिस्मानी तकलीफ में भेजा जाए। यही वजह कि इंतहाई ताकीद तकरीबन वाजिब के बराबर, वाजिब नहीं, वाजिब के बराबर कि हर 5 साल के बाद आदमी हज दोबारा करे। हज करवाओ इसका सवाब ज्यादा है कि खुद हज पर जाओ इसका सवाब ज्यादा? हज पर तो वही भेजेगा ना जिसके पास इतने पैसे, तो उससे कहा गया कि नहीं हज पर भेजना नहीं, हर 5 साल में एक बार तुम्हें खुद हज पे जाना, क्योंकि पैसे खर्च करना मसला नहीं है, तकलीफ उठाना पैसे वाले के लिए हज की तकलीफ। अब ये बात मैंने कहा ना कि जरा जरा मौजू से हट रही, तो आज मोमिन का इम्तिहान ये नहीं है कि वो ये कहे कि चौथे इमाम के जमाने के मोमिन कैसे थे, एक आग उठाने को तैयार नहीं थे? हम तो खुद आग पे खड़े रहने को तैयार है इमाम के नाम पे। तुम्हारा इम्तिहान ये नहीं है, तुम्हारा इम्तिहान है दाढ़ी रख के देखो, तुम्हारा इम्तिहान है सर पे स्कार्फ रख के देखो, तुम्हारा इम्तिहान है कि मिक्स गैदरिंग से बच के दिखाओ। अब ये जुमले की तशरी आगे आएगी, क्योंकि मेरी कोई मजलिस इसके बगैर होती नहीं। तो इम्तिहान वक्त के वक्त देखना पड़ता कि जिसके लिए इंसान आसानी से तैयार है वो इम्तिहान नहीं लिया जाता, जो नफ्स के ऊपर बहुत मुश्किल गुजरता वो इम्तिहान लिया जाता है। लेकिन खैर, ये तो मैंने इसलिए कहा कि 3-4 बार ये वाकया मैंने पढ़ा तो लोगों ने कहा कि मौलाना इससे ज्यादा तो आज हम इतने बदतरीन आखिरी जमाने में बैठकर इमाम की बात मान रहे हैं। खाली आग नहीं है इमाम की बात, पूरा दीन है ईमान की बात। और यही पर मेरे मजलूम आका का शबे आशूर का वो जुमला आ रहा जो जुहूर इमाम तक हर मोमिन के लिए एक आई ओपनर है कि वो गौर करे, कहीं जुमला मेरे लिए तो नहीं। अन्नास अबीदु दुनिया व दीनो लसेकुन अला अलसिनते हैं फैजा यहूतून बिल बला कल्ला दैयान हो। वही चौथे इमाम के जुमले को आगे बढ़ाइए, करबला में हुसैन पहुंच गए और शबे आशूर आ चुकी। करबला में आका हुसैन का उमर साद से दो या तीन मरतबा मुकालिमा हुआ जिहाद से पहले। भाई एक तो जगह आज भी करबला में है मकाम खिताब उमर साद, ये वो जगह है कि जहां आका हुसैन और उमर साद की मुलाकात हुई थी। एक तो शब आशूर मुलाकात हुई थी, किस तरह से उसने मजाक उड़ाया आका हुसैन का, बहुत अहम उसमें एक पैगाम है, इसलिए वो बात कल या परसों आएगी जरूर। तो उसमें एक बार उमर साद से गुफ्तगू करते हुए आका ने एक जुमला कहा जो सबके लिए, ये लोग दुनिया के बंदे और गुलाम। अब देखिए ये जुमला, ये बता रहा है कि ये आम लोगों के हवाले से बात नहीं हो रही। अद्दीन और लसेकुन अला अलसिनते, दीन इस्लाम शरीयत, दीन अस हुसैन, हुसैन दीन है ना। अब और हुसैन बता रहे कि ये दीन उनकी जबान का एक चटखारा, जबान का एक मजा, कहने में क्या जाता, दीन दीन इस्लाम शरीयत अकीदा जबान के ऊपर। लेकिन जब कभी इसकी वजह से उनका कोई इम्तिहान लिया जाता है, कल्ला दयानो, दीनदार लोग मैदान में बहुत थोड़े से नजर आएंगे, बाकी सब भाग जाते। लेकिन करबला में आका हुसैन ने ये बात कही या करबला के बाद पांचवें इमाम की गवाही मौजूद है कि मेरे बाबा ने ये बात कही, उसका खुलासा ये कि जबान से अपने आप को दीनदार कहना ये तो चटखारा चाशनी है, चटनी है, खाने के साथ मजा आता है जब चटनी मिला दे, दीन का भी बड़ा मजा आता है जब जबान से बात करे। लेकिन जब मकाम अमल मकाम इम्तिहान होता, करबला में हुसैन के भी साथी और फिर आखिरी जमाने में इमाम जमाना के साथी और दरमियान में ये वाली बात, जब फिर तुमको नजर नहीं आई। और अजीब बात ये, अजीब बात ये, ये जुमला अब जो मैं कहने जा रहा हूं, बहुत सोच समझ के अपने जहन में आजकल की बात इंग्लिश स्पीचेस का कॉन्टेक्स्ट जहन में रख के बात कर रहा हूं। घर के हमारे यहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आज से 30-40 साल पहले ये बात उर्दू तकारीर में तो नहीं आई, लेकिन मोमिनीन के आपस के डिस्कशन में आई। और वो ये है कि इस वक्त गैबत में मौजू से नहीं हट रहा हूं, मर्जियत का इदारा बहुत अहम इदारा, ये मर्जियत ने इस वक्त बचाया हुआ है साहिबान ईमान के इस ईमान को भी, जितना भी है जैसा भी है, ये मर्जियत के इदारे ने तहफुज दिया है। जहां से मजलिस शुरू हुई, झूठा इमाम बनाया जा रहा, बन गया। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट, जब तक के शिया कौम के दिलों में अपने मर्जे की इज्जत है, चाहे अमल ना हो लेकिन एक इज्जत, उस वक्त तक इस तरह से किसी झूठे को सामने लाना आसान नहीं। बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी, आज का जो मेरा ट्रैक, अब ये मर जाइए, इसमें जो और बाकी एतराजात होते हैं वो तो आप बहुत ज्यादा सुन चुके हैं। एक एतराज ये होता कि चलें हमें मराजे कराम, चले बड़ी इज्जत बड़ा एहतराम, उनके रिप्रेजेंटेटिव या नुमाइंदे वकील या जो वो कहीं अपना कोई नुमाइंदा भेजते, इस हवाले से बहुत ज्यादा बातें की जाती। अब मेरे पास वक्त भी नहीं है, मेरा मौजू भी ये नहीं है कि मैं इस जुमले को मजीद जरा बना सवार के पेश करूं। बुकला के हवाले से मराजे की शख्सियत को डैमेज किया जाता, बहुत सारी बातें, खुम्स का गलत इस्तेमाल, किसी ने मर्जे को नहीं देखा है खुम्स का गलत इस्तेमाल करते हुए, बात वकीलों से शुरू की जाती। तो खैर ये जहन में एक जुमला रखिएगा, जैसा कि मैंने कहा 30 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले पाकिस्तान में और इंडिया में हमारे आम लोग आपस के मुबाइसों में ये बात कहते थे। आज मैंने बात इंग्लिश स्पीचेस में जुमले सुने। खैर, वो एक तरफ, ये मौजू पे आ नहीं रहा हूं, लेकिन अब जो बात कर रहा हूं इससे मुताल्लिक, जबान से अपने आप को मोमिन कह रहे हैं, कुरान ने कहा इम्तिहान, आका हुसैन ने कहा कि चटनी न बन जाए, चाशनी न बन जाए, चौथे इमाम ने कहा कि बातें कर रहे हो, करबला में होते तो तुम में से बहुत कम अपनी जगह पे मौजूद होते। और अब आइए ये बात कि ज्यादा ताज्जुब उस वक्त होता कि जब ऐसे ऐसे लोग आपको नजर आए मकाम इम्तिहान में भागते हुए कि जिन पर, कैसे मैं ये जुमला कहूं कि तौहीन इमाम भी ना हो और पैगाम भी, जिन पर खुद इमाम मासूम ने ट्रस्ट किया हो और भरोसा किया हो और पता चला वही दगा दे गए। नऊज़ु बिल्लाह, इमाम के जजमेंट में गलती नहीं है, लेकिन वही एक सुन्नत कायम करना कि मर्जे के वकील तो बहुत बाद में आते हैं, मराजे का बड़े से बड़ा एहतराम करने वाला भी ये कभी नहीं कहेगा कि ये इल्म गैब रखते हैं। इमाम मासूम तो इल्म गैब रखते हैं ना। हमारे सामने दो शख्सियतें ऐसी आती जिनमें आज मेरा मौजूद दूसरी शख्सियत, लेकिन जब उसका जिक्र है तो एक जुमले में पहले को भी निमटा। मौला के जमाने, देखिए मौला को इतना भरोसा हो कि उसे गवर्नर बना दे, जियाद, यही इब्ने जियाद का बाप, जिसके बारे में यह जुमला कहा जाता कि इब्ने जियाद तो करबला की वजह से तारीख का सबसे बड़ा गुनाहगार बना, वरना बाकी अगर सारे जिंदगी के जुल्म को देखें तो उसके बाद, यानी क्वालिटी वाइज तो इब्ने जियाद का जुल्म, एक जुल्म कायनात का सबसे बड़ा जुल्म, लेकिन तादाद के एतबार से इसके बाप ने ज्यादा जुल्म किया। वो कौन था? मौला का गवर्नर था, और मौला ने उसे बसरे का गवर्नर, इब्ने जियाद को यजीद ने बसरे का गवर्नर बनाया, उसके बाप को अली ने बसरे का गवर्नर बनाया। और कैसा निकला बाद में, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आखिर उसमें इतना बड़ा कन्वर्जन आया कैसे, उसको छोड़ी। दूसरा आदमी, बहुत सारे क्विज कंपटीशन होते हैं, हु वांट टू बी मिलियनर, कौन बनेगा करोड़पति, नीलाम घर। अगर एक सवाल ये किया जाए, मैंने दो तीन मजलिसों में पढ़ा है ये, लेकिन वैसे आम तौर पे मेरा अंदाजा है कि मोमिनीन के 95% लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। कोई कबाहत भी नहीं, ये हमारे दीन का कोई हिस्सा को थोड़ी, तारीख की एक मालूमात। अगर ये सवाल किया जाए कि ऐसा कौन आदमी जिस पर अली ने इतना भरोसा किया कि उसे अपने लश्कर का आलमदार बनाया, और यजीद ने इतना भरोसा किया कि उसी आदमी को करबला में हुसैन के खिलाफ अपने लश्कर का आलमदार बनाया, एक ऐसा भी आदमी, ऐसे तो बहुत सारे कि पहले अहले बैत के साथ थे, बाद में अहले बैत के दुश्मन हो गए, पूरे खारजी, जो आज की जो दाइश या आईएस है इसका सबसे पहला वर्जन। मगर ये अलग बात है कि आज अली वाले होकर अली के खिलाफ हो गए, ऐसा आदमी कि अली को उस पर इतना भरोसा कि उसे अपने लश्कर का आलम दे रहे हैं, और मैदान करबला में उमर साद उसी को अपने लश्कर का आलम दे रहा, एक ऐसा भी आदमी। अच्छा, अब इस्लाम में मस्जिद की कितनी अहमियत, और मस्जिद में नमाज पढ़ाने का सवाब, पढ़ने का सवाब कितना, मस्जिद की फरादा नमाज मस्जिद के बाहर की जमात नमाज से भी ज्यादा अहम बताई गई, हत्ता आयतुल्लाह सिस्तानी उस फतवे को भी तस्लीम नहीं करते कि जिसमें यह कहा गया, अब हमें फतवों पे एतराज का हक नहीं, ये इनका फतवा है तो वो, जिनका फतवा है वो भी बड़े काबिल एहतराम महाराज जी, कि एक मसला है ना कि जी औरत के लिए घर में नमाज पढ़ना ज्यादा बेहतर है मस्जिद के मुकाबले में, लेकिन बहरहाल इसके पीछे भी एक पैगाम तो है ना कि औरत का हिजाब इतना अहम है, लेकिन आगा सिस्तानी कहते ये भी नजरिया गलत, और औरत के लिए भी मस्जिद का इतना ही सवाब है जितना मर्द के लिए। अब यह बताने की जरूरत तो है नहीं, खवातीन बाकायदा जमात में शरीक होती हैं, जहां जहां पे नमाज होती है वहां जाती हैं, लेकिन کوفے کے حوالے سے، اور کوفہ، کوفہ شہر، کوفے کی مسجد ہے. ابھی آپ لوگ اس کثرت کے ساتھ کربلا اور کوفے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں کہ مجھے وہ سارے فضائل بیان کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ وقت ہے. لیکن ایک بات کہ روایت میں آیا ہے کوفے میں جاؤ تو خبردار پانچ مسجدوں میں نماز نہ پڑھنا. کوفے کی پانچ مسجد. اچھا، عالم اسلام میں ایک مسجد بہت مشہور ہے، مسجد زرار، جہاں نہ صرف یہ کہ نماز پڑھنے سے روکا گیا تھا، لا تقم فی ہے سورہ توبہ، خبردار اس مسجد میں قیام نہ کرنا، بلکہ اس مسجد کو توڑنے کا حکم آیا، مسجد کو جلانے کا حکم آیا، مسجد کو کوڑا کرکٹ کی جگہ بنانے کا حکم آیا. مسجد زرار، یہ ہر ایک کو معلوم ہے، اس لیے کہ قرآن میں سورہ توبہ میں اس طرح سے اس کا ذکر آ گیا. مگر معصومین نے پانچ اور مسجدوں کے نام لیے کہ نہیں لیے؟ کہ دیکھو شہر کوفہ میں جب جانا، کوفہ بہت اہم شہر، کا مکہ اللہ کا حرم، مدینہ رسول اللہ کا حرم، کوفہ میں اہل بیت اطہار کا حرم. شہر کوفہ کو باقی شہروں پر وہی فضیلت ہے جو ہم اہل بیت اطہار کو باقی انسانوں پہ فضیلت. فضائل کوفہ کا جو سلسلہ چل رہا تو ایک گھنٹہ پورا میں بول سکتا ہوں، لیکن پھر اس میں جملہ آ گیا. یہ جو ابھی فضائل میں بتا رہا ہوں یہ خالی مسجد کوفہ کے نہیں، پورے شہر کوفہ کے. مگر کہا کہ جب وہاں جاؤ تو پانچ مسجدوں میں کبھی قیام نہ کرنا. چاہے وہ پانچ مسجدیں، ایک تو معصوم نے اس کی وجہ بتائی، کہا یہ پانچ مسجدیں وہ جو لوگوں نے اپنی منت پورا ہونے کے بعد اس خوشی میں تعمیر کرائی تھی. اور منت کیا تھی؟ کربلا میں حسین کا خاتمہ. یہ پانچ مسجدیں ایسی ہیں جس کے لیے منت مانی تھی پانچ الگ الگ آدمیوں نے، کہ اگر کربلا میں حسین مارے گئے تو اے خدا ہم تیری خوشی کی خاطر شکرانے میں ایک مسجد بنائیں گے، تیرا گھر. پانچ ایسی مسجدیں خالی خالی شہر کوفہ کی. باقی کس کس شہر میں مسجدیں نہ بنائی گئی ہوں وہ ایک الگ بات ہے. کوفہ، کیونکہ معصوم اتنا زور دے رہے ہیں کوفے کی زیارت کا تو یہ بھی بتا رہے ہیں. اچھا، اب یہ جو پانچ مسجدیں، ان میں سے ایک مسجد جس کا زیادہ تذکرہ آیا، پانچ میں سے بھی زیادہ، کہا وہ جو ہمرا علاقے میں خاص. اب یہ ایک عجیب سملرٹی بن گئی ہے 1400 سال پہلے کے واقعے کے آج کے زمانے سے. اب صرف پاکستان کے لوگ سمجھ پائیں گے، انڈیا کے لوگ شاید سمجھ بھی نہ پائیں، لیکن میں کوئی اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنا رہا ہوں کہ سمجھانے کے لیے وقت ضائع کروں. کہا خاص پانچ مسجدیں، اس میں خاص طور پہ جو مسجد منطقہ ہمرا میں، ہمرا، ہمرا عربی کا لفظ، کلر کا نام ہے، احمر مانے سرخ، ہمرا مانے سرخ. کہا جو لال مسجد، کوفے شہر میں ایک مسجد ایسی بنائی گئی تھی، یہ مولا کی حدیث ہے جو کربلا سے بھی پہلے گزرے، کہ خبردار اس لال مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھنا. اور پھر چھٹے امام کی حدیث ہے کہ لال مسجد میں نہ جانا، کیونکہ یہ ہمارے دادا حسین مظلوم کی شہادت کی خوشی میں بطور شکرانہ یہ مسجد بنائی گئی تھی، لال مسجد. یہ بھی ایک عجیب بات، پاکستان میں ایک لال مسجد ہے اور وہ کیا ہے لال مسجد؟ لیکن اس سے پہلے شہر کوفہ، اور کس نے بنائی وہ لال مسجد؟ اب میں نام لے رہا ہوں جو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، شبس ابن ربعی، یہ ایک نام، شبس ابن ربعی. بعض لوگ اس کو شیس ابن ربعی بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ شبس ابن ربعی ایک نام. یہ کس آدمی نے بنائی؟ یہ کون تھا؟ یہ علی کے زمانے میں علی کا اتنا چاہنے والا تھا کہ وہ جو اردو زبان میں دو تین محاورے ہیں نا، کہ ماں سے زیادہ چاہے، اور اس انداز کے، علی کے زمانے میں علی کا اتنا چاہنے والا تھا کہ مولا نے جب داعش یا آئی ایس کا جو سب سے پہلا ہمارے سامنے نمونہ آیا، خارجی، جیسے یہ آئی فون ہے کہ 7 آ گئے، 7S آ گیا، کیا آ گیا، یہ تو ترقی ہوتی جا رہی ہے، لیکن جو پہلا خارجی عالم اسلام کا پہلا فرقہ ہے جو مولا کو کافر بھی سمجھتا ہے نعوذ باللہ، اور واجب القتل، اور بظاہر اتنے متقی اور پرہیزگار، اتنے دیندار کہ ان کا تقوی اور دینداری دیکھیں. اب یہ تقوی بیکار ہے جو اہل بیت کے مقابلے پہ آئے، لیکن یہ چیزیں سب بات کی. خارجی، مولا کا مقابلہ ان سے ہوا جنگ نہروان. میں تاریخ کے خشک خشک چیزیں پڑھ کے आपके वक्त को जाय नहीं करना चाहता, लेकिन ये बहुत अहम एक पैगाम जिसके नतीजे में फिर हमारी आगे की मजलिसें आगे बढ़ेंगी। शबस इब्ने रबई वो था कि हर वक्त मौला का नाम लेता, हर वक्त मौला के साथ रहता, यहां तक कि जब मौला जंगे नहरवान के लिए निकले, ये खारजियों से वो जंग हुई थी जिसके अंदर सारे मारे गए थे, सिर्फ 10 बचे थे जिनमें इब्ने मुलजिम वगैरह भी था, उत्तामा का बाप वगैरह इसी में मारा गया, बहुत तफसीली वाकया। जो मौला निकले खारजियों का मुकाबला करने, जो अली को वाजिबुल कत्ल समझते, जो नऊज़ु बिल्लाह अली को काफिर समझते, मुकाबला करने निकले, तो मौला ने अपने लश्कर को तरतीब दी। अब देखिए कि शबस इब्ने रबई को अपने लश्कर का एक अलमदार बनाए और किनके साथ मिला के, स्टेटस देखिए, अपने लश्कर जो राइट साइड का हिस्सा था, राइट फ्लैंक, मैमना हुजूर इब्ने अदी को बनाया अलमदार, और लेफ्ट साइड शीस इब्ने रबी को, ये दोनों दरमियान में अबू अय्यूब अंसारी, पैगंबर इस्लाम के सबसे पहले मेजबान, जो ऐसे मेजबान थे कि जब 10वें इमाम ने अपनी बहू नरजिसे खातून को बुलाना चाहा, जो एक रोमी बादशाह के महल में एक तरह कैदी के तौर पे थी, तो अबू अय्यूब अंसारी ही की औलाद में एक शख्स को यह कह के बुलाए कि तुम उसकी औलाद में हो जिसके घर में हमारा जद पहला मेहमान बन के गया, ये मेरी बहू तुम्हारी मेहमान बन के आएगी। तो गर्ज ये कि अबू अय्यूब अंसारी और कैस इब्ने साद, ये भी एक बहुत अजीब वाकया, इताअत इमाम कैसे की जाती है, ऐसे करे जैसे कैस ने की। अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं कि कैसाएं कौन, लेकिन अभी आज की मजलिस में ही बातें छोड़ दीजिए। जिस लश्कर कैस, हुजूर इब्ने अदी, अबू अय्यूब अंसारी, ये तीन अलमदार, उसका चौथा अलमदार या चौथा अलम या चौथा फ्लैग शीस इब्ने रबी को दिया, और ये इतना तोहफा जा रहा था कि जैसे ही उस जमाने के दाइश खारजियों का लश्कर नजर आया, कहने लगा कि या अमीरुल मोमिनीन, मैं इनको देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, फौरन इन पे हमला करके इनका खात्मा कर। अली ने कहा यह हमारा तरीका नहीं, पहले उनको कायल किया जाएगा, पहले उनसे हुज्जतें मांगी जाएंगी, पहले उनसे बहस की जाएगी, हो सकता है कि वो कायल हो जाए, वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि उनको कत्ल किया जाए। दुश्मनान अहले बैत के लिए अली की पॉलिसी कि पहले उनको कायल करना है, हक का पैगाम पहुंचाना, ये तड़पा जा रहा है कि नहीं मौला मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसे लोगों। अब मैं इसका पूरा वाकया नहीं पढ़ रहा हूं, मौला से इतनी मोहब्बत कि और मौला के सामने इतना इताअत का इजहार कि मौला ने आलम दिया। और ठीक यही आदमी 20 साल के बाद करबला के मैदान में है, आशूर का दिन है, और आका हुसैन जब जिहाद शुरू करने से पहले खुतबा दे रहे हैं, तो उसमें एक जुमला यह भी था कि कूफे वालों तुम्ही ने तो खत लिख के मुझे बुलाया, तो उसमें किस आदमी का नाम लिया, इसी शीस इब्ने रबी, क्या शीस इब्ने रबी, सबका नाम नहीं लिया, सिर्फ दो नाम लिए थे, पहला नाम शीस का था कि तुम्हारा भी तो खत आया था मेरे पास, तुमने लिखा था फर्जंद रसूल मेवे पक गए बाग तैयार है आप तशरीफ लाइए। शीस इब्ने रबी ने कहा हुसैन नऊज़ु बिल्लाह तुम गलत बयानी कर रहे हो, और आका ने अपने खेमे से खत मंगवा कर इसको दिखाया, और फिर मौला ने अपना वो खुतबा दिया जिसका एक जुमला तो आज हर एक को याद है, हाय हाथ में नफ़ज़िल्ला अल मौत औला मिन अल आर, हम और जिल्लत बर्दाश्त करें मर जाना, यानी इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी, वो खुतबा दे रहे हैं। तो ये क्या कहता है शीस इब्ने रबी, सनान से कहता है सनान हम यहां हुसैन को कत्ल करने आए हैं कि हुसैन की तकरीर सुनने आए, इनको इतनी मोहलत क्यों दे रहे हो कि तकरीर कर रहे हैं। आका ने जलाल के आलम में देखा, कहा कल तक तो तुम मेरे बाबा के लश्कर इतना जोश और जज्बा दिखा के मेरे बाबा के साथ, कहा कि तुम्हारे बाबा ने जादू करके मुझे बहका दिया था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, तुम्हारे बाबा ने मुझे मिसगाइड कर दिया, आज हक मेरे सामने आया, और मैं आशूर के दिन कह रहा हूं, करबला के मैदान में कह रहा, मैं अल्लाह से यह नज़र करता हूं कि अगर अल्लाह ने मुझे तेरे कत्ल की तौफीक दी तो मैं कूफे में एक पूरी मस्जिद अपने खर्चे से बनाऊंगा। ये शीस इब्ने रबी जो कल अली का इतना काबिले भरोसा साथी है कि एक अलम अगर हुजूर इब्ने अजी को दे रहे हैं। देखिए मैंने हुजूर का खाली नाम लिया, तफसील में नहीं गया, इसलिए कि अभी दो तीन साल पहले हुजूर के रोजे की बेहुरमती की गई तो उनके वाकयात और फजाइल हर एक केल में आ चुके हैं। वो शख्सियत एक बाजू पर वो है दाएं तो बाएं पे ये, और ये इस अंदाज से बदला। आप फिर क्या हुआ, फिर करबला के बाद कुछ अरसे गुजरा, मस्जिद बनाई लाल मस्जिद। इमाम ने कहा खबरदार कूफे की हर मस्जिद में नमाज पढ़ना, ये पांच में न जाना, खासतौर पे लाल मस्जिद। और उसके बाद फिर जब मुख्तार का जिहाद शुरू हुआ, मुख्तार के साथ मिल गए, लेकिन दरमियान में ही दगा देकर फिर मुख्तार के कत्ल करने वालों में शामिल हुआ। और ये आलम इस्लाम का पहला आदमी है, और कुछ लोग कहते हैं दूसरा, और कुछ कहते हैं पहला, और आखिरी आदमी को आप जानते हैं लाल मस्जिद के हवाले कि जिस वक्त ये मुख्तार के मुखालिफीन में शामिल हुआ तो इख्तदार मुख्तार के पास, चुनाचे ये बुरका पहन के कूफे से भागा था। लाल मस्जिद का पहली लाल मस्जिद का पहला बानी शीस इब्ने रबी बुरका पहन के निकल के भागा उस शहर कूफा से जहां उसने लाल मस्जिद बनाई। वो पहला है तो फिर आखिरी तो मुझे आपकी हंसी बता रही है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां पे एक सवाल आता, वो ये कि यकीनन फितरत इंसानियत कुछ कह नहीं सकते, आखिर ये इतनी बड़ी तब्दीली इसमें आई कैसे, यहां से वहां, वहां से यहां। अब ये सवाल का जवाब इंशाल्लाह कल की मजलिस में या परसों आएगा। अभी सिर्फ इतनी बात कहना कि मासूमी जब इस किस्म के दावा करने वालों जो जबान से बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं लेकिन इमाम के लिए गाड़ी रखने को तैयार नहीं, इमाम के लिए एक चादर पहनने को तैयार नहीं है जिनकी औरतें, इमाम के लिए जरा सा अपने म्यूजिक और गाने को छोड़ने को तैयार नहीं, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले इतनी से कुर्बानी ना दें, तो इमाम बार बार बताते हैं और एक जुमला कह के फिर मैं अपनी मजलिस को आज खत्म करूं, बाकी बातें कल। वो ये कि यह इमाम के जुमले को मैं अपने अल्फाज में इसलिए बता रहा हूं कि अब वक्त नहीं रहा, वर्किंग डे की मजलिस है, मुझे आपका ख्याल है, सिर्फ अल्फाज है इमाम को अपने अल्फाज में तब्दील करके सिर्फ आखिरी जुमले तक ले जाऊंगा। इमाम ने फरमाया कि हमारे जमाने में ये वाकयात हैं एक पांच सात दस आदमी, वरना हमारा चाहने वाला वो है कि अगर उसे दुनिया और माफिया दे दिया जाए और फिर ये कहा जाए कि अली से बेजारी इख्तियार करो, वो मर जाएगा, उसके बदन के 70 टुकड़े होंगे, हर टुकड़े से अली की आवाज आ रही होगी। लेकिन ऐसे वाकयात आखिरी जमाने में ऐसे वाकयात कसरत के साथ होंगे। अब मासूम के जमाने में एक शीश इब्ने रबी, मासूम के जमाने में एक जियाद इब्ने अभी, फरमाया कि आखिरी जमाने में इस कसरत के साथ वाकयात होंगे कि लोग दीन खुदा से इस तरह से निकलेंगे कि कुरान ने क्या कहा शुरू इस्लाम के बारे में कि यदखुलून फी दीन अल्लाह अफवाजा, और आखिरी जमाने में यखरुजून मिन दीन अल्लाह अफवाजा। लेकिन तुरफा तमाशा यह है कि हर एक ये समझेगा मुझसे बड़ा दीनदार कोई नहीं, तो नाम लेना, खाली इमाम को लब्बैक कह के पुकार लेना, खाली इमाम का तस्करा कर देना काफी नहीं है। हमारे सामने माजी में भी वाकया, जंगे नहरवान में जब मौला कामयाबी हासिल करके पलटे तो जो लश्कर के चार आलमदार थे पांच, उन्हें बुलाया, बुलाने के बाद शाबाश दी, आलमदार का रोल बहुत अहम होता, मगर शाबाश देते हुए दो जुमले कहे इमाम ने, जब शाबाश दे रहे हैं तो अबू अय्यूब अंसारी और हुजूर इब्ने अजी वगैरह कहने लगे या अमीर अल मोमिनीन, बहरहाल आपको भी मुबारक कि आपके दुश्मनों का खात्मा हो गए, पूरा लश्कर मारा गया, सिर्फ 9 आदमी बचे। कहा कि ये आखिरी जमाने में दोबारा निकल के आई, क्योंकि अभी अपनी माओ के रहम में है, अभी अपने बाप के सुल्ब में है, ये मेरी आज की मजलिस से मुताल्लक नहीं। और फिर शीस इब्ने रबी को देखा और कहा कि देखो आज तुम मैदान में इस तरह से लड़े और मेरी हिमायत की है, मेरे बेटे के कत्ल में शरीक न होना। और इसने तड़प के कहा था मौला मैं मर जाऊं, मेरे जहर में अगर हल्का सा ऐसा वसवसा भी आए। और वो आदमी है जो आशूर के दिन हुसैन के खुतबे के बीच में कह रहा कि ऐ सनान हम हुसैन को कत्ल करने आए कि हुसैन की तकरीर सुनने के लिए आए। ये इतनी बड़ी तब्दीली करबला हमें एक क्वेश्चन मार्क देता है कि नहीं देता कि आखिर वजह क्या थी, आखिर ये होता क्यों। और अब आइए मेरा वो जुमला जो आगे की मजालिस की बुनियाद बनेगा, इस्लाम ने उसकी दो वजूहात बताई, वो इंशाल्लाह कल से। आज मैं हल्का सा इशारा भी नहीं कर रहा वरना बात बहुत फैल जाए। कहा कि दो बहुत बड़ी वजह है कि इमाम से ये जुमला सुन के कि मेरे बेटे के कत्ल में शरीक ना होना, तड़प के मौत की दुआ करने वाला और फिर वही काम कर रहा, दो वजूहात जो बला में बाऊर के वाकये में कुरान में भी आई। लेकिन लेकिन अगर इंसानों में ऐसे वाकयात हैं तो बहरहाल ऐसे वफादार भी हैं। क्या अभी आपके कितने साथी करबला की जियारत को जाएंगे पहले अशरे में, आशूरे के दिन कबीले बनी असद का मैदान करबला में आज भी आना। ऐसे भी थे और इंसान तो इंसान, इताअत इमाम करने वाले हुसैन की सवारी के वो जानवर भी थे कि जिनका एक अमल आज किसी की समझ में नहीं आ रहा। करबला में आज भी वो जगह, लोग उसकी जियारत भी करते हैं लेकिन ये नहीं मालूम होता कि जिस जगह की हम जियारत किसी और हवाले से कर रहे हैं वहां ये वाकया भी पेश आया कि आज ही का दिन तो था ना, हुसैन का काफिला चल रहा और जा तो कूफे की जानिब था लेकिन यजीद के हुक्म की वजह से हुर ने काफिले का रुख फेरा और चल अब बगैर किसी मंजिल के, अब कोई डेस्टिनेशन नहीं, कूफे जाने से रोकना है, कहां ले जाना है ये हुर को भी नहीं पता, यजीद के या इब्ने ज़ियाद के अगले हुक्म का इंतजार कर रहा, उसे न पता हो लेकिन ज़ुलजिना को पता था। एक मर्तबा चलते चलते एक दरिया आ गया, दरिया को क्रॉस किया और घोड़ा ठोकर खा के रुक गया। और आज अजीब बात यह है कि जिस कायनात का एक एक जर्रा हुक्म इमाम की इताअत करता, हुसैन इशारों पे इशारे कर रहे हैं, इसको नाफरमानी नहीं कहेंगे। जैसे मौला ने अगर सुलह हुदैबिया के मौके पर रसूलुल्लाह का लफ्ज काटने से इंकार कर दिया और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास अलमदार करबला हजरत अब्बास के खुसर, उन्होंने सिफीन की लड़ाई के आखिर अली के साथ लफ्ज अमीरुल मोमिनीन काटने से इंकार कर दिया, या ज़ुलजना आज ठोकर खा के रुका और हुसैन एड़ लगा रहे हैं और इशारा कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ रहा, ये नाफरमानी में नहीं आता। फिर क्या चीज है ये कल, क्योंकि अब ये जरा समझाने वाली बात। अब्बास से अलमदार हुसैनी लश्कर के इंतजामात को देखने वाले एक मरतबा घबरा के कहा कि आका समझ में नहीं आता ज़ुलजना को क्या हो गया, शायद बहुत थक गया है, सवारी का जानवर बदल दीजिए। एक नहीं दो नहीं तारीखों में है कि सात जानवर बदले गए लेकिन आज कोई नहीं है कि जो आगे बढ़े और हुसैन को इस सरजमीन करबला से बाहर ले जाए। रुके हैं सब, अब ये जो जितनी देर लग रही अकराब के खेतों में काम करने वाले लोग आके जमा हो रहे, फुरात के दरिया के दूसरी जाने बागात और खेत थे, अब जमा होते जा रहे एक मजमा बन गया। हुसैन ने एक मरतबा कहा अब्बास जरा इन लोगों से पूछो तो सही कि इस जगह का नाम क्या है। अब वो लोग जमा है नाम बता रहे हैं, किसी ने कहा कि फर्जंद रसूल इस जगह का नाम नैनवा, किसी ने कहा कि फर्जंद रसूल और यहीं पे बाबुल वो आके खत्म होता। और हुसैन का सवाल के कोई और नाम भी है, किसी ने कहा कि हाँ मौला इसको शत्तुल फुराद भी कहते हैं, हुसैन ने कहा कोई और नाम भी है, किसी ने कहा इसको खाजरिया भी कहते हैं। नाम पे नाम बताए जा रहे हैं, हुसैन कह रहे हैं कोई और नाम, कोई और नाम, कोई और नाम, आखिर में सारे नाम मुकम्मल हो गए। फर्जंद रसूल हमें तो इतने ही नाम पता। कहा कि अपने कबीले के बूढ़े लोगों से पूछो, शायद इसका कोई और नाम भी हो। एक बूढ़ा जो जमींगीर था हाथों में उठा के लाया गया, कहा कि ये सबसे पुराना आदमी है इस इलाके का। हुसैन ने कहा कि इस जगह का कोई और नाम भी है। वो बूढ़ा कांपती हुई आवाज में कहता है, फर्जंद रसूल हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि इसका एक नाम कर्बोबला भी है। जैसे ही ये कर्बला का नाम सुना, हुसैन ने कहा बास सारी सवारियां बिठा दो, खेमे लगा दो, महमिलों से सैदानियों को खेमे में पहुंचा दो। वो बूढ़ा तड़प गया, फर्जंद रसूल यहां पे कयाम न करें, जब से दुनिया बनी है आज तक कोई नबी या नबी ज्यादा ऐसा नहीं है जो यहां से गुजरा और उसके बदन से खून न जारी हुआ हो। हुसैन ने कहा तुमने खाली अपने बुजुर्गों से तारीख सुनी, और मुझे तो पता है मेरे नाना ने इसी सरजमीन के लिए बचपने में मुझसे वादा लिया था। मगर अभी वो बूढ़ा हुसैन को रोक रहा और हुसैन उसे बता रहे हैं कि यह कायक फिज़ा थी और कहती आका शहजादी ज़ैनब ने आपको बुलाया और कहा कि एक लम्हे के लिए आ जाना। ज़ैनब की बात सुनी, बस एक मरतबा हुसैन तड़प के चले ज़ैनब के खेमे में पहुंचे। कहा ज़ैनब अभी अभी खेमे लगे हैं, खेमे में पहुंची हो इतने जल्दी, क्या ऐसा काम याद आ गया। कहा भैया खेमे उठा लो और यहां से आगे चलो। हुसैन पूछते हैं ज़ैनब किस लिए। कहा जब से मैंने इस खेमे में कदम रखा, मुसलसल किसी बीबी के रोने की आवाज मेरे कानों में आ रही। हुसैन ने कहा ज़ैनब आवाज तो सुन रही हो, क्या पहचान नहीं रही हो, यह अम्मा फातिमा की आवाज है जो हमारे साथ मदीने से यहां तक आई है। और ज़ैनब मैंने इसीलिए यहां पे खेमे लगा के कयाम किया है कि अम्मा ने बचपने में वादा लिया था, अम्मा ही से किया हुआ वादा पूरा करने आया हूं। और उधर बूढ़ा आदमी मुसलसल मना कर रहा है, उसकी आवाज हुसैन के कानों में आई। एक बार हुसैन बाहर निकले और चारों तरफ जमा शुदा लोग, जो हमारे साथी इस एक हफ्ते में कर्बला के लिए जाने वाले हैं उनसे भी मैं बात कर रहा हूं, जो अरबईन पे जाएंगे उनसे भी बात कर रहा हूं, जो साल में कभी भी जाएंगे। हुसैन ने देखा कि इतनी देर में बूढ़े की वजह से पूरा कबीला यहां आ गया। बस हुसैन ने सरदार कबीला को बुलाया और कहा कि सरदार कबीला हम ये जमीन खरीदना चाहते हैं। हाथ जोड़े, कहा मौला आप हमारे मेहमान हैं, मेहमान बनकर जब तक दिल चाहे रहिए। कहा कि हमें चंद दिनों के लिए नहीं रहना है, अब तो कयामत तक हमें यहीं पे कयाम करना है। हम ये जमीन खरीदेंगे और वही कीमत देंगे जो बाजार की कीमत है, मगर दो शर्तें। पहली शर्त आप है। कहा दो शर्तें हैं, पहली शर्त यह है कि कयामत तक जब मेरा कोई जाहिर कर्बला आए तो उसे मेरा मेहमान बना के 3 दिन रखना। हुसैन ने कर्बला पहुंचकर न पहले अब्बास को याद किया, न अकबर को याद किया, न कासिम को याद किया, न असगर को याद किया, पहले आपको याद किया। जब हमारा कोई जाहिर हमारी जियारत के लिए कर्बला आए उसे मेरा मेहमान बना के 3 दिन रखना। और दूसरी शर्त क्या है, एक वादा ये भी करो जब लश्कर यजीद चला जाएगा और हमारे बेगोरों कफन लाशें जलती रेती पे पड़े होंगे तो आना और हमारे लाशों को दफन करना। सारा कबीला तड़प गया, कहा फरजंदे रसूल हमारी जाने निसार, हमारी जाने कुर्बान, हमारा वादा है। कहा कि नहीं, खाली तुमसे वादा काफी नहीं है, जाके अपने कबीले की औरतों को यहाँ भेजो। औरतों को पैगाम मिला, सारी औरतें घबरा गईं। आज कौन सा दिन आ गया, फरजंदे फातिमा ने हमें बुलाया, हमारी शहजादी सहरा के लाल ने हमें बुलाया, सबने अपनी अपनी अबाएं पहनी। एक बार मैदान कर्बला में पूरे हिजाब के साथ आई, मौला आखिर हमें आखिर हमें हम भी क्या इस काबिल हैं कि आपकी कोई खिदमत करें? कहा देखो लश्कर यजीद बहुत जालिम है, हो सकता है इसके डर से तुम्हारे मर्द घरों से बाहर न निकले, तो एक वादा मुझसे करो, पानी भरने जब फरात के किनारे आओगी तो हमारे लाशों को दफन करके जाना। सारी औरतें रोती जाती है, एक ही जुमला, अय फरजंदे ज़हरा, अय फातिमा के लाल, हमारा आपसे वादा है। एक बार कहा कि नहीं, जाके अपने बच्चों को भिजवाओ, छोटे छोटे बच्चे, आनो मोहम्मद के हम सिन बच्चे, एक मरतबा खेलते खेलते आ रहे हैं और सोच रहे हैं अल्लाह ये दिन भी आ गया, हम भी इस काबिल हो गए आका की खिदमत करें। हाथों को जोड़ा, मौला हमें क्यों बुलाया है? कहा देखो लश्कर यजीद के डर से हो सकता है तुम्हारे बाप और माँ घरों से बाहर ना निकले, तो एक वादा करो कि खेलते खेलते जब फरात के किनारे आओगे, हमारे बेगोरों कफन लाशें नजर आएंगे, तो अपनी नन्नी नन्नी मुट्ठियों में खाक लेके हमारे लाशों पे डाल देना। बच्चे बहुत छोटे, कब्रें नहीं खोद सकते हैं, लाशें नहीं उठा सकते हैं, मुट्ठियों में खाक लेके हमारे लाशों पे डाल देना। बस एक जुमला कह के बात खत्म करता हूँ, और वो ये है कि ये जुमला बता रहा है कि आका की कितनी तमन्ना थी कि अगर हमें पूरा दफन न किया जा सके तो एक एक मुट्ठी खाक हमारे लाशों पे आ जाए। वो मेरा दिल चाहता है मैं अपने आका सज्जाद से कहूँ, मौला सज्जाद, जब आपका बाबा मारा गया और काफिला करबला से चला तो ये जालिम आपको मोहलत नहीं दे रहे कि आप लाशें दफन करें, आप कब्रें खोदें? एक मुट्ठी खाक तो उठा सकते थे ना, बाबा की तमन्ना थी, एक मुट्ठी खाक ही डाल देते। मालूम है आपका चौथा इमाम क्या करेगा? आपका चौथा इमाम अपने दोनों हाथ आपको दिखाएगा और कहेगा कि हाँ है वो जवान बेटा, क्या करे जिसके गले में तौक भी हो, पाँव में भेड़ी भी हो, हाथों में हथकड़ी भी हो, वो बाबा के लाशे पे एक मुट्ठी खाक भी डाले तो कैसे? अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व सयालमु लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़ल। परवरदिगार आज की दो मुहर्रम की ये तारीख जब मेरा मजलूम आका मैदान करबला में पहुंचा कयामत तक रहने के लिए, हुसैन के इन्हीं तमाम मसाइब का वास्ता जो लोग आज की मजलिस में आए हैं, खास तौर पर इनको और दुनिया भर के साहिबान ईमान, जान माल इज्जत आबरू औलाद, साहिबान ईमान की हिफाजत फरमा, हम पर जुल्म करने वाले सारे जालिमों को नीस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार हमारे तमाम मरहूमीन जो सफ़े अज़ा पे बैठ के जिंदगी भर जिक्र ईमान सुनते रहे, आंसू बहाते रहे, गिरिया करते रहे, इन मरहूमीन को आले इल्लीन में जवारे मासूमीन से मुलाक फरमा। हम में जो बेरोजगार है या रिस्क की किसी परेशानी में मुब्तला है, तुझे सकीना और असगर की प्यास का वास्ता उनकी परेशानी को दूर फरमा। हमारे बीमारों को इस बीमार करबला सज्जाद का वास्ता शिफाए कामिला अता फरमा। और खुदावंदा हम सबको सीरत अहले बैत और सीरत शोहदाए करबला पे चलने की तौफीक अता फरमा। दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों और शियान हैदर कर्रार, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो यमन में हो, चाहे वो सऊदी अरब में हो, चाहे वो बहरीन में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, यह दुनिया के जिस जिस खत्ते में, इन सब की मदद फरमा और हमेशा हमेशा जुल्म के खात्मे के लिए इमाम जमाना के जुहूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन।